गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ओम करतो समर किल्बे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रमण कर, विशेष कसक के साथ श्रमण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रमण कर। जब तेरा शरीर छूटेगा इस सत्र की जो तुझे सहायता मिलनी है, जितना अमृतो इससे मिलना है, तो तुझे तेरा शरीर जब समाप्त होगा उस समय तुझे वो राहत उतनी अमृतो मिल जाएगा। कितना अमृतो मिलेगा कि ब्रह्म लोक में चला जाएगा, ब्रह्म लोक में अपना जीवन पुण्य खा करके हो सकता है वो एक कल्प एक महाकल्प तक भी रह सकता है, और इतना अमरत्व तुझे प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो वही गीता ज्ञान दाता आगे क्या कह रहा है। अब 17वां श्लोक 40वें अध्याय का 44वां अध्याय और ये 17वां श्लोक मंत्र, ये नो कहे श्लोक नहीं कहना, ये तो मंत्र है और गीता जी के श्लोक है, ये तो कहने की बातें हैं। श्लोक कहो चाहे इनको दोहे कहो, एक का बात है। इसका क्या अर्थ है यहां देखो, मूल संस्कृत में है, ये है हिरमेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम ये असव आदित्य पुरुष है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, वह देखो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष है, और अहम और मैं खम, खम का अर्थ होता अंतरिक्ष और स्वर्ग, इसके दो अर्थ होते हैं अंतरिक्ष और स्वर्ग। कहता मैं ऊपर अंतरिक्ष में मैं ब्रह्म हूं, अहम ओम खम ब्रह्म, ये अहम यहां लिखा अहम ओम खम ब्रह्म, मेरा ओम नाम है और मैं उस इस अंतरिक्ष में ब्रह्म, मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये क्या बताते हैं, वह पूर्ण परमात्मा है कोई और वह प्रोक्ष रूप है, और मैं सबके सबका मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक सबके गुण कर्म और स्वभाव करके अधिक हूं। ब्रह्म का अर्थ कर दिया अधिक, और ओम सबका रक्षक मैं, जिसका ओम ऐसा नाम जानो। अब हमने ये लेना है कि इस ब्रह्म से अन्य कोई और पूर्ण परमात्मा है, कोई और पूर्ण परमात्मा है जो ऊपर गुप्त है, हमने ये लेना। हमारा इससे काम बहुत बढ़िया चलेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपने आत्मा भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। वेद क्या बता रहे हैं, और दुर्गा तक भी कहती है कि ब्रह्म फाइनल भगवान है, ऋषि की पूजा करो, ओम नाम है और कोई परमात्मा नहीं है, यह इसी की सब पूजाएं छोड़ दो। और ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा कीजिए। अब वेद क्या बताते हैं और ये अनाड़ी ऋषि महर्षि ये क्या बताते हैं, परमात्मा निराकार है, परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। अरे भले आदमियों, यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, पाप नाश करने का अर्थ है कि हमें कोई कष्ट आया है अपने पाप कर्म तय, क्योंकि पुण्य से सुख पाप से दुख होते हैं। तो दुख आपके ऊपर आया तो आपने परमात्मा की इच्छा पड़ी, परमात्मा की तलाश हुई, और ये कहे कोई कि भगवान पाप नहीं काट सकता, अक्षमा नहीं कर सकता, तो फिर पाप नहीं कटा तो दुख निवारण नहीं हुआ, फिर भगवान की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और सब नास्तिक बन जाएंगे। और काल यही चाहता है, ये ज्योति निरंजन चाहता है कि अपने इस 21 ब्रह्मांड में किसी को भी ज्ञान ना होने दू। और ये नकली संत ऋषि महर्षि प्रभुता के भूखे, इनको ज्ञान क्या है, का था को नहीं, और एक संस्कृत भाषा सीख के और ऐसे उवा वाई का ज्ञान इकट्ठा करके अपने अनुभव की अलग पुस्तक बना गए और उन पर लिख गए कि ये मैंने वेदों के शास्त्रों के प्रमाण के आधार से लिखा है, जो वेदों को नहीं समझ सकता इसको पढ़ो, और वेदों अनुसार वेदों वाले ही ज्ञान इसमें दिया है। अब होली आत्माओं को ये विश्वास हो गया कि हमारे जो गुरुजी थे ये संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, तो उनको कोई शंकाय ना रही कि गुरुजी ने जो लिखा है अपने अनुभव की पुस्तक में वो वेद के विरुद्ध हो सकता है, सपने में भी नहीं सोचा उन्होंने। इसलिए उनके लोक वेद दंत कथाओं को ही आगे आधार मानकर अपना जीवन नष्ट करते रहे। उसके लिए दिखाते हैं आपको एक, पहले तो दिखाते हैं सतयुग के उन गुरुओं का, देवताओं के गुरुओं की व्याख्या देखिएगा। श्री मद्द देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, और ये कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चंदनलाल गोस्वामी। ये वही है जो अभी आपको दिखाई, ये रह रहकर इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि ये प्रचार कुछ दिनों में पूरे विश्व में और टेलीविजनों पर परमात्मा दया करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो फिर रह रहकर ये फिर दिखाने आवश्यक है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहां से छपा है। इसके 243 पृष्ठ पे 282-284 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति के ज्ञान, इसके वचन इनके बोल दिखाते हैं। पांचवा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि देवराज, कोई कथा सुना रहे व्यास जी, देवराज इंद्र की बात सुनकर, ये स्वर्ग के देवताओं का राजा है इंद्र, और बृहस्पति जी इन सब देवताओं के गुरु जी हैं। देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अब क्या बता रहे हैं, तो अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, यतन करने पर भी जो होनहार होगा वही तो सामने आएगा, वह तो सामने आएगा। अब देखो, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यानी ये तक भोगने पड़ेंगे, यानी आपके दुख है तो दुख भोगना पड़ेगा। और क्या निष्कर्ष दे दिया कि ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्ष यानी नाश के सूचक हैं। यानी सुख है तो आपका पुण्य नाश हो रहा है, और आपके ऊपर कष्ट है तो आपके ये पाप नाश हो रहे हैं। ये तरीका है अज्ञानियों का पाप नाश होने का बताना। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह, ये तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी, यानी पाप के ऊपर जो कष्ट आया है या आएगा आपकी किस्मत का प्रारब्ध कर्मों का, वो तो भोगने से ही कम होगा, उसका कोई विकल्प नहीं, आपके कष्ट को टाला नहीं जा सकता। फिर भी कहता है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे वाह, पेट में पीड़ा हो जाए, किलकी मार आदमी, अब नो क्या, कोई बात नहीं, पेट में पीड़ा है तभी भी तू सुख का अनुभव कर। बृहस्पति जी का कभी पेट में दर्द होया जो पता लगेगा किलकी मारेगा या अनुभव सुख का करेगा, ये कोई समाधान है इन ऋषियों का? अरे पेट में दर्द है, दुख हुआ तो समाधान है उसकी टेबलेट हो, उसकी कोई मेडिसिन औषधि करो, और उस औषधि से वो पेट दर्द नाश होगा, फिर सुख का अनुभव होगा। ऐसे ही पाप से जो कष्ट आपके ऊपर आए हैं वो पाप का नाश होगा, नाश करेगा प्रभु पूर्ण परमात्मा, फिर आपको चैन होगी जब आपकी टेंशन मिटेगी। एक पंडारा गांव है, जींद के कतिसार है, बिल्कुल साथ लगता, और वहां इन गीसा पंथियों का, ये भी कबीर पंथी कहलाते हैं लेकिन नकली, इनका अपना एक डेरा है, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इनका एक वहां पर दो आश्रम है, एक आश्रम में सत्संग हो रहा था और वहां चार दिन सत्संग कराया करते, वो पाठ चला करता था। दास भी तब तक उपदेश देने का अधिकार नहीं मिला था इस दास को, प्रभु ये दिखा रहे थे कि इनको देखिए किसे संत से, तो वहां जाते थे उनके सत्संग सुने, तो उस एक स्टेज लगा देते थे ऐसे तकत डाल के लंबे, उन पर बैठा देते पांच सात जितनी वक्ता आती थी, तो उनमें से एक वक्ता एक का बात की रटवा रहा, तीन दो सत्संग और दिए उसके तीन, के भी जीव तो परमात्मा है, जीव शरीर नहीं है, ये शरीर तू नहीं है, तूने अज्ञानता से शरीर को तू मान लिया, स्वयं मान लिया। अगर इस शरीर में कोई पीड़ा है तो शरीर को है, आपको नहीं है। आप ये एक बार मन में धारणा कर लीजिए, आपको कोई दुख महसूस नहीं होगा। तो ऐसे बहुत लंबे चौड़े को था और बड़ा विद्वान, कदे संस्कृत बोलर, फिर हिंदी बोलर, कदे अंग्रेजी में भी दो शब्द कह दे, तो सभी श्रोता भी प्रभावित और उनके साथ बैठे जो वक्ता थे वह उसे डिमोरलाइज हो गए। लास्ट वाले दिन उसने के प्रवचन किया कि मैं एक बार जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था, उसको बहुत भयंकर दर्द था शरीर के अंदर, मैंने उसको समझाया, रे भोले आदमी तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ये कष्ट तो शरीर को हो रहा है, तू क्यों रो रहा है। कहते इतनी बात सुनकर मेरे वचन से उसने अपने आप को पहचान लिया, उसका दर्द दूर हो गया, वो चैन से बैठ गया। अपने आत्मा श्रोता तो जो भी वक्ता कह रहा है उसने सच्ची मान लेता है, चल ठीक कह रहा है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था मैं। अब वो सत्संग करके समापन हो गया 2 बजे 1:30 बजे, वो जाके अपने कमरे में, अलग से कमरे उनके अलॉट कर रखे थे एक एक के, उस कमरे में चैनते वो लेटिया। आधे घंटे के बाद में उसके ऐसा पेट में भयंकर पीड़ा हुई, चिल्ला व डांगर की डाल पशु की तरह मारे, कल की आयो मुर्गा। इवां आम लोटे थे थोड़े से, आंख लगेंगे इतना उसकी वजह लाइट सुनी। इतने में दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए कार, उसने उसमें डाल के 2-3 किलोमीटर वहां से शहर है वहां ले गए जींद में। वो सवेरा 5-6 बजे लाए उसको डॉक्टर से, उसका चैन हुई आ गया और उतर के गाड़ी में तेन चाल से जैसे जच्चा चल लग रहे हैं। और फिर वो जो दूसरे उसके साथी थे वक्ता संत वो नक थे तो वह भी नकली है, वो आके उनमें से कहने लगे उनको उस नकली को कि महाराज जी तो आत्मा था और तू क्यों रो रहा था भाई, शरीर को दर्द था को तो था ही नहीं, क्यों कलकी मारा था युवराज ने अड़पड़न भी ना दिए एक डांगर। तो इन्हों कहे चल चल अपना काम कर। तो ऐसे ऐसे हैं ये नकली और ये ऐसी थोड़ी बृहस्पति जी की है। नौके दुख में भी सुख का अनुभव करे, पेट में दर्द हो नौके चैन ते लेट जा रो मत, क्योंकि मराजे पेट का कोई भी पीड़ा है तो उस पीड़ा का समाधान हो किसी तरह हो, टेबलेट से हो या कोई मालिश तो हो तो उसका तब वो पीड़ा मिटे फिर चैन हो। ऐसे ही पाप से दुख है तो उस पाप का नाश हो, उसको नाश परमात्मा कबीर जी ही कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब आगे देखो इन राक्षसों के गुरु अपुनात्माओं, जैसे अभी इसी 414 पृष्ठ पर लिखा है कि जो पहले वाले युगों में सतयुग त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे वो वर्तमान के ब्राह्मणा जैसे तो वो राक्षस थे, यानी वो भी भक्ति भक्ति करते थे। अब जैसे प्रहलाद एक पुण्य आत्मा था, ये सभी साधना भक्ति वेदों अनुसार जैसा इनको ज्ञान मिला समझा वेदों को ऐसे ही करते थे, लेकिन वो मर्यादा का पालन ना करके सारे विकार भी करते रहे साधना भी करते रहे, इसलिए उनको हे समझने लग गए, उनको राक्षस की कैटेगरी दे दी। और थे वो सभी थे तो अच्छी आत्माएं, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं का पालन नहीं किया भक्ति मार्ग का, इसलिए वो राक्षस कहलाए। जो मर्यादा का पालन करते रहे वो देव कहलाए। और ये सभी हैं ब्रह्मा जी के ही पुत्र, ब्रह्मा जी की संतान हैं, और ब्रह्मा वाले ज्ञान को ही ये दोनों पक्ष आधार मानते हैं। अब सुनो चौथा सकंद और पृष्ठ नंबर 243 पे व्यास जी कहते हैं प्रह्लाद की बात सुनकर, प्रह्लाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ये राक्षसों के गुरु प्रह्लाद जी के गुरु ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, राक्षसों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न ही पाताल में ही जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। देख यहां तक ठेका ले लिया इसने कि तुमको ना तो पाताल जाने दूंगा और ना तुम डरो घबराओ ना, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर क्या कहते हैं, तुरंत ही बात बदल गया। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो यह वचन बड़ा ही हितकर है, हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, यानी ब्रह्मा जी के ज्ञान की भी पोल पट है साथ में, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके, यानी पाप कर्म को जो काट सके। विपरीत समय के कारण, अब व्यास जी कह रहे हैं कि अब प्रह्लाद को कह रहे हैं कि अब विपरीत समय थारी उल्टे दिन लाग रहे हैं, इस कारण तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो, प्रह्लाद को कह रहे हैं। अब देखो यहां तो कह रहे हैं कि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए। और फिर यूं कहे, मैंने ब्रह्मा जी पर एक बात सुनी है, वह बड़ी सच्ची है अटल है, कि धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है पुरुष स्वयं पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। तो कहता है अब एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्राप्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। देखो अभी से थे ये नकली गुरु और इसे श्रद्धालु भगत ऊपर तक कह रहे हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा, नहीं जाने दूंगा पाताल में, और नीचे कह भाई जाना तो पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी के वचन है, जो कर्म है वो कट नहीं सकता, भोगना ही पड़ता है। अब वेद क्या बताते हैं और दिखाता हूं। एक नकली वर्तमान मांडी पा गया था युद्ध में ऋषि युद्धानंद। अब यहां यही बात बिगड़ी रही कि हमारे पूर्वज शिक्षित थे और ये नकली संस्कृत भाषा जाने थे, बस वेद व्याधि नहीं, कोई इनको पता ही नहीं था वेदों में क्या लिखा है। तो दंत कथा को ही आधार बनाकर लोगों को बांटते रहे, अपना अनुभव अलग से पुस्तक बना गए। हम भोली आत्मा इन पुस्तकों को पढ़कर ये सोचते रहे कि वेदों में ऐसा ही लिखा होगा जो महर्षि जी ने लिखा है। अब देखो क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो स्वामी जी के इस पोज ने देख कर, ओहो हो भगत तो नो कटका मर जा टूट पड़ा, नो कहो महर्षि पढ़ा था वजह के साथ ध्यान ला रहा है, बस परमात्मा से कनेक्ट हो चुका है। इस पोज ने देख कर नो मार रखे थे नाम, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती ही। ये सन 1824 में जन्म हुआ, सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी 59 साल की उम्र में 59। अब यहां देखो अत सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाणी, सत शास्त्र प्रमाणी समविन्त, यानी वेद आदि भिन्न भिन्न प्रकार के सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? देख स्वामी जी दानंद का कितनी फीत ला रखी है। श्रीमत परमहंस प्रीवराजक का आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। अब बता इतनी उपमा हो भगवान, और देखिए इनका ज्ञान आगे के पाओगा। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब। और प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब, फोन नंबर इतना। ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, ये रोहतक से छपी है, ये इनका दूरभाष है। इसमें देखिएगा सातवें समुल्लास में अपनात्मा यहां से लेते हैं, यहां से प्रारंभ होता है सातवां समुल्लास। इसमें जहां से प्रारंभ होता है 151 पृष्ठ है। ये स्वामी जी से प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा, नहीं मानते क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। इसके लिए प्रथम उसमें आते हैं अपनात्मा, यहां देखना ये क्या कह रहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि वेद में अनेक भगवान है प्रभु है, आप मानते हो? स्वामी जी कहते नहीं मानते, कि कहीं भी वेद में यह नहीं लिखा है कि जिससे अनेक परमात्मा सिद्ध हो। और अभी आपको दिखा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में दो भगवान खुद लिखता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर परोक्ष है और मैं ब्रह्म हूं, मैं अंतरिक्ष में आकाश में रहता हूं, दो भगवान हो गए। आगे देखिए अब ईद का प्रथम समुल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद जी बताते हैं समुल्लास, प्रथम समुल्लास है प्रश्न नंबर 15 पे। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अपनात्माओं यहां हम ईश्वर कहें चाहे ब्रह्म कहें, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ईश्वर को ही बोलते हैं इन्हीं की इनकी इसकी थ्योरी में, इसके सिद्धांत में। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि वेद में ब्रह्म अनेक है, हम ईश्वर के समान स्थान पर ब्रह्म बोले हैं, ब्रह्म अनेक है, इस बात को तू मानते हो वा नहीं? स्वामी जी कहते उत्तर नहीं देते, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। अब 151 पृष्ठ पे है, अब देखना 154 पृष्ठ पे है। किसी ने प्रश्न किया, सातवां समुल्लास है ये, सातवां समुल्लास। किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अच्छा देखो 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है और दो भगवान सिद्ध कर रहा है अपनी कलम तय। किसी ने पूछा, प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी जी कहते उत्तर करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? अब स्वामी जी कहते नहीं, पाप नहीं छुड़ा देगा। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? वो ठीक है भी, फिर प्रार्थना की स्तुति की जरूरत रहेगी? स्वामी जी कहते उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या क्या है? स्वामी जी का उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह से सहायता का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यो कर दिया तोड़ सारिये, अपने सिद्धांत को अपनाश कर दिया, अपनी व्याख्या को आप ही कैंसल कर दिया। इसे कितने सिद्धांत, इसके दो सिद्धांत ये खत्म हो गए कि परब्रह्म क्या है, दो भगवानों का बोध है परब्रह्म। जैसे एक दादा एक परदादा, एक परदादा दूसरा दादा, तो दो दादा हो गए। ऐसे ही ब्रह्म और परब्रह्म इन्हीं की थ्योरी के अनुसार दो परमात्मा का बोध है। अपनी कलम से लिख रहा है कि उपासना से पाप तक कटे नहीं, लेकिन परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म को छोड़ दूसरे उस परब्रह्म दूसरे ब्रह्म से मेल हो जाए, दो ब्रह्म हो गए, दो ईश्वर हो गए, आप पर लिख रहा है। और साक्षात्कार तो साकार से होता है, निराकार से नहीं। जैसे बच्चा एग्जाम इंटरव्यू देने जाता है, साक्षात्कार के लिए जाता है, दोनों आमने सामने आकार में होते हैं, तब उनका साक्षात्कार होता है। अब दो तो इसने आपका कैंसिल कर दिया अपनी थ्योरी के परमात्मा अनेक नहीं है, जबकि वेद भी बता रहे हैं, ये स्वयं भी लिख रहा है कि अनेक है, दो है, ये कहता कि नहीं एक और दो, वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा जिससे अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, अनेक ईश्वर सिद्ध हो। वेद भी सिद्ध कर रहे हैं, यू भी अपनी थ्योरी आपका कैंसिल कर रहा है। और परमात्मा साक्षात्कार से तो अब पैसे दो गया, वो साकार है। अब रही बात, परमात्मा पाप नाश नहीं करता, इसको वेद झूठा कर देंगे। इसका वेदों ने तो पहले भी कर दिया कि परमात्मा अनेक है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के, अभी आपको दिखाया था मंत्र नंबर 17 में, दो परमात्मा, एक पूर्ण परमात्मा ऊपर प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञानदाता कहता मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये है यजुर्वेद, देख यजुर्वेद के ऊपर किसा इसका तो मोर ला रखी थी, जैसे यूए राइटर है वेदों का और इस यूए सर्वेश्वर है यजुर्वेद पर भाषा भाष्य। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरिशदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत स्वामी जी ने ही इनका अनुवाद किया है, दयानंद जी ने। मुद्रक है प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में आते हैं। ये देखिएगा, अष्टमोध्याय और 241 पृष्ठ पे, ये नीचे इसका मूल संस्कृत है, 13वां श्लोक आठवें अध्याय का। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसी। यहां देखिएगा 242 पृष्ठ पे इन्होंने अनुवाद किया है, 242 पर अनुवाद किया है पदार्थ। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, अब देखो ये इतना चतुर था, ये चातुर प्राणी था, हाय हाय। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं और ये मूढ़ मुग्ध है ठोठ, ये संता के नी काम के, इनकी देगड़ जोठ, ये तोड़े मरे फिर इन दौरे पड़े रहे नकलियां दौड़। ये तो चातुर प्राणी थे, ये नकली संत ऋषि महर्षि, वेदों का ज्ञान था नहीं, इन्होंने जानबूझ कर फिर जब अपने अज्ञान सिद्धांत को ऊपर रखने के लिए वेदों को भी घुमाना चाहा, और अब प्रत्यक्ष देख लेंगे कि ये एक अन्य का महर्षि नहीं था, इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था, व्यर्थ है। और जो अब भी नहीं मानेंगे वो तो कहते हैं चतुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी चतुरता दिखाकर अपनी चोरी छुपा रहे हैं, और ये मूड मुग्ध है ठोठ, जो भी बिना मानने के तो ठोठ है, मरो इसके दिन के साथ बनो भूत गिर ले। और संतों के नहीं काम के, वो मारे काम के कोई ना, जो आख्या देख कर नहीं मान रहे, जान बूझ साची तजे और करे झूठ ते ने, और ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में बिना दे। अब दिखाते हैं यहां इसने लिख दिया मित्र, अब पढ़ने वाला पहले तो पढ़ रहा था इसको, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा करते, उसमें क्लियर कर रखा है कि आगे भी 163 पृष्ठ पर कति क्लियर कर रखा है कि जैसे कर्म करता वैसे फल मिलता है, पाप नाश परमात्मा क्षमा नहीं करता। तो उस विधान को पढ़कर सत्यार्थ प्रकाश को आदमी कति आरूढ़ हो चुके हैं कि जो इसने लिखा फाइनल है। अब वेदों को पढ़ते समय ये मित्र शब्द आ गया, तो उन्होंने सोचा मित्र मित्र के बारे में महर्षि ने लिखा होगा, चलो आगे ठीक है मित्र। अरे सब का उपकार मित्र कैसे कर देगा, भगवान ही कर सकता है, इतनी भी सोच होनी चाहिए हमारी। और इसका भी समाधान दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सूनवास में कर रखा है कि मित्र का अर्थ परमेश्वर मानो। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश है, ये वही सत्यार्थ प्रकाश जो अभी आपको दिखा था, और इसके प्रथम समुल्लास में ही पृष्ठ नंबर 18 पर, ये प्रथम समुल्लास है और पृष्ठ नंबर ये 18 है, सत्यार्थ प्रकाश है। सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। बस अब यही क्लियर हो जाएगा कि यहां मित्र के स्थान पर हम परमेश्वर पढ़ेंगे। 242 पृष्ठ पे यो यजुर्वेद आठवें अध्याय का 13वां श्लोक मंत्र का यहां अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर मित्र परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप भी इसने अनुवाद किया, पाप कहो चाहे अधर्म कहो और चाहे अपराध कहो एक ही बात है, क्योंकि हम बोले गणे हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते थे कि तो अपराध की तो अधर्म की तो पाप लिख दिए। ये सब के उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, एनस्य माने पाप के, नाश करने वाले हो अपराध को चाहे पाप को, मनुष्य के साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के अवेदनम माने नाश करने विनाश करने वाले हो, पितर कर्तव्य पिता के किए हुए एनस्य यानी पाप के अपराध की, विरोधाचरण लिखा उन्होंने अपराध के, अच्छे प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तव्य अपने किए हुए अनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो। अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म के, ओहो अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सब के अनस्य माने पाप के, ये दुष्ट आचरण लिख दिया। उड़ जाना चाहो था, अगर एक बार लिखा होता ना स्वामी जी कद्दे सूत में आण दे, इतना उड़ जा देता इसका। अनस्य माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, अवजन माने नाश करने वाले हो, हैं पाप नाश करने वाले। अपुण्य आत्माओं, वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं और परमात्मा के गुण बता रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। और स्वामी जी और ये जितने भी ऋषि महर्षि आपने देखा, यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ब्रह्मा जी का ज्ञान ही श्री शिव और विष्णु जी को प्राप्त है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान ही इनको यानी देवताओं को प्राप्त है, इन गुरुओं को बृहस्पति जी को प्राप्त है। तो ये तो कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म यानी पाप कर्म नाश नहीं हो सकता, और वेद बता रहे हैं पाप नाश कर देता परमात्मा, घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब जैसे महर्षि दानंद जी की थ्योरी क्या बता, अपना सिद्धांत पढ़ा, इनकी व्याख्या पढ़ी कि उपासना से पाप का नाश होते नहीं है और परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता, और फल है। अब कोई वैद्य का बोर्ड ला रहा हो, डॉक्टर का, और उसके पास कोई जाकर कहे क्या औषधि से रोग नाश हो जाता है, और वो नकली वैद्य कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा, स्वाभाविक बात है, मरीज तनु का अभी औषधि किस लिए खावा भाई, कैसे और लाभ है क्या कि पहलवान बन जाएगा, तेरे मसल बन जाएंगे। अरे भले आदमी जान जान नवरी है, अनुका दवाई खाने से पहलवान बन जाएगा, यानी और लाभ है। अब परमात्मा की साधना तो है पाप तो नाश हुआ नहीं और परमात्मा मिल जाएगा, ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म मिल जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। मिलना शब्द भी साक्षात्कार साकार से ही है, निराकार से मिल रहे के हो तो सब जगह फिर व्यापक कहता आप मिल रहे हैं, उससे पहले भी मिला हुआ था, उपासना से भी पहले मिला हुआ है। अपने आत्मा जैसे साबुन के गुणों में लिखा हो कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, नाश कर देता है, और किसी ने बोर्ड ला रखा हो साबुन विक्रेता थोक विक्रेता, उसे कोई पूछा भी साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा, और वो उत्तर दे नकली और डुप्लीकेट, जिसने कभी सपने में साबुन नहीं देखा, वो कहने साबुन से मैल तो छुड़ा नहीं सकता कपड़े का साबुन, तो फिर और क्या लाभ होता है, उसे कहते कपड़ा मजबूत बन जाएगा। हा 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 हा, अरे भले आदमियों, एक सोचने की बात है, कति साधारण सी पॉइंट है। साबुन विक्रेता ये शब्द बोल सकता है, जिसने साबुन सपने में भी ना देखा और कदे प्रयोग भी नहीं किया, वो झूठा कपटी की बोर्ड लाके और लकड़ी के गुटके काट के उड़ा धरे बैठा है, नौकर इस कपड़ा मजबूत हो जाएगा, इसने ले जाओ उठा के, यानी कपटी धोखेबाज और नकली व्यक्ति है वो, या फिर उसने कोई नशा कर रखा। दो बात मत एक है, वो इतना अज्ञानी है नशा भी करता है, नशे वाला व्यक्ति ऐसी बात कर सकता नहीं, विद्वान तो करे नहीं सकता ये बातें जो महर्षि दानंद ने अपना सिद्धांत बताया है। तो यही दशा महर्षि दानंद के ज्ञान की है कि परमात्मा पाप तनाश करता नहीं, उसकी उपासना से उसका मिलन हो जाता है। अरे अपराधी आत्मा जिसके पाप नाश हुए नहीं और वो भगवान में तो प्राप्ति कर रहे, और निराकार की प्राप्ति के हुए, तुम निराकार निराकार का घाटा जोड़ रहे। अब जो प्रसंग था भाई, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं परमेश्वर क्या कहते थे, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता जो सत्य से परिचित हो, सत्य का साथी हो। कोई भी सत्य से परिचित नहीं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं, ना ब्रह्मा जी ना विष्णु जी ना शिव जी, और ना ही ये सतयुग में ब्राह्मण ऋषि महर्षि और गुरु इनके बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी, और ये नकली कलियुग के महर्षि दानंद जैसे तो बहुत दूर की बातें हैं। तो कुछ भी ना जाने था, नरी भांग पी पड़ारा अगर तर ब्लाक समाधि भी भांग पी के बैठ जाता पड़ारा तर छह छह अठ अठ घंटे बैठा रहता इन लोग न सोचते भाई तो महर्षि पड़ा है हैं और समाधि ला रहा है, और पी के भांग आदमी चाहे जाडे में बैठा रहो चाहे सर्दी में कितने पड़ा रहो शराब पी के उसने क्या पता। अब ये भांग पीता था महर्षि दानंद। अपने आत्मा ये देखिएगा, स्वामी जी भांग पीते थे दानंद जी, और किस चीज में लिखा है ये देखिएगा। महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक है आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक है पंडित श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशकारी समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके प्रश्न नंबर 38 पे ये देखिएगा, ये यहां का वह सिद्धांत। ये क्या कहता है, 1 अक्टूबर 1856 देखियो 1857 में इनके विषय में लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान था, और 1856 अक्टूबर में तो भांग पिए पड़ा था। ये देखो 1 अक्टूबर 1856 बुधवार तत् अनुसार आसोज सुदी 2 संवत 1913 को दुर्गा कोहू के मंदिर पर जो चंडाल गढ़ में स्थित है पहुंचा, वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। अपने आप लिख रहा है स्वामी जी, वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने में योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया, और यानी भांग पीने लग गया, और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। अपुण आत्माओं अपनी करकमल से इनने के उसमें लिख रखा है कि 1856 में अक्टूबर में यानी आधे से ज्यादा 1856 जा चुका था वर्ष, और 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और इसके इसमें लिखा है 3 साल इसका नहीं पता यू कहां लापता था, इसका ये नहीं पता छुप गया कि डर के भांग पिए पड़ारा। ये तुम्बाकू सूंघता था, चाय पीता था। अब देखो, और नंगा रहता था, उलास सूंघता था, हुक्का पीता था, और तुरे की। ये देखिएगा इसी पुस्तक पर जीवन चरित्र महर्षि दानंद 208 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी 208 पृष्ठ पे। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तंबाकू रखा था। तमाखू सूंघता भी था और खाता भी था और वो कभी पीता था, यू समाज सुधारक है। अरे वाह वाह वाह, यही से थे। कहते हैं करनी तज कथनी तथ्य अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। आप अमर है नहीं और न समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा, ये देखना नंगा भी रहता था यो। 129 पृष्ठ पे देखना, 129 पृष्ठ पे स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांक लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। कोपिन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। और एक हुलांस की पुड़िया थी, क्योंकि हुलांस सूंघा करते थे। जय हो मैं ऋषि दानंद समाज सुधारक की। अब देखो कब पीते थे ये, कति नंगा रहता था, कति नंगा। पहले हुक्का पीते थे, ये दिखाते हैं 302 पृष्ठ पे। अपुन आत्मा दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने इनके अज्ञान के पोल खुलवाकर जनता को ये जचाना है, नकली और असली का भेद बताकर सत्य पर आधारित करने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है, ताकि इसको समझेंगे सुनेंगे तभी तो इससे दिल अटेगा हमारा, फिर हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो वेदों में लिखा है, हम इन दंत कथाओं को क्यों ग्रहण करें जिन नकलियों ने हमें बता रखा है। हम वेदों को सत्य मानते हैं तो वेदों अनुसार ही साधना करें, कल्याण हो जाएगा। 302 पृष्ठ पे इस स्थान पर, इस यानी देखिएगा, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। अब ये जो पहले पुस्तक किसी ने उर्दू में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है, तो यह अनुवाद करता हिंदी से उर्दू से हिंदी में वह कह रहा है कि इस स्थान पर, ये ऊपर उन्होंने एक प्रमाण दिया इसका, यहां पर ये नीचे यहां से देखिए, ये एक लिखा है, यहां से यहां देखते हैं कि सन 1877 यानी 1883 में इनकी मृत्यु होगी, 6 साल पहले सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी महताब सिंह की कोठी में ठहरे। उस कोठी पर अंग्रेजी में यह लिखा हुआ था कि यह कोठी प्लोडन महोदय की स्मृति में यूरोपियनों के प्रयोग के लिए बनाई गई है। वहां स्वामी जी 10-15 दिन रहे। उस लेखक के लिखे हुए होने के कारण गोरे लोग आकर तंग करते थे, इसलिए वहां से समीपस्थ लेखराज के बाग में चले गए। 10 दिन वहां रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान में जैसी कठिनाई आई वैसी इसमें कोई कठिनाई नहीं आई। भागीरथ और कमलनयन पंडित प्राय जाया करते थे। अब यहां कहता है इस स्थान पर, आगे क्या लिखा है, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे, सन 1877 में, 83 में इनकी मृत्यु होगी, 6 साल 5। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तमाखू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? तो वेद का ठेका ले रहा हुक्का पीवे, क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ और आखिर में उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो? स्वामी जी ने कहा यदि तू हुक्के से क्रुद्ध है तो ले, यह कहकर उसे तोड़ डाला। अब पुण्य आत्मा 1877 तक तो हुक्का पाड़ा करता, और के बेरा छोड़ा ना करिए, उसका आगे तोड़ दिया होगा और आगे हुक्के कौन से मिल लेना थे, आगे फिर स्टार्ट कर दिया होगा। अब सन 1877 तक तो हुक्का पी और देख इसके तर्क करने का तरीका। अब वो तो कह रहे अभी तू भागीरथ पंडित तो कहे एक तरफ तो तू वेदों का ठेका ले रहा और फिर तू हुक्का पीवे आप व्यसन करे सारे। क्या वेद में लिखा हुक्का पीना तयो के कह है? क्या वेद में कहीं निषेध है कि वेद में ना पीने के लिए भी कोई नहीं लिख रखा? यानी अपने व्यसन को करने के लिए वेद फेर डालिए कि वेदों में पीना ना पीना भी तो ना लिख रखा है मत पियो। तेरा तो था यू तर्कवाज। अब सन 1877 तक था यो हुक्का पड़ा करता आगे छोड़ ना छोड़ा वो चलो हम इस बात पर जाते नहीं। तो आग समाज सुधार कर दिया इसने फिर तुम्हाखू यू सूंगे तुम्हाखू यू खावे हुक्का यू पीवे भांग यू पीवे और फिर भाई इसकी कलम तोड़ व्याख्या महिमा कर रखी। बोला बड़े समाज सुधार थे बड़े बुराइयों से दूर किया समाज को तो सारी बुराई आप करता था और इसी भांग के नशे में यो सत्यार प्रकाश लिख रहे। क्या इसने सूर्य पर आदमी रहते हैं सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में महर्षि लिखा है। अब वेद बता रहे वेदों का अनुवाद किया और सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि पाप नाश नहीं होते तो भांग के नशे में मंडा रहा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं दास इसका दुश्मन नहीं है मेरा इसका कोई भाई कोई बंटवारा नहीं है। उद्देश्य ये है कि ये दास एक आध्यात्मिक टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर और ऋषि महर्षि गुरु कहलाते थे। एक टीचर ने यदि सिलेबस के विरुद्ध कोई व्याख्या बता रखी है विद्यार्थियों को दूसरे टीचर का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस गलत सवाल को ठीक करे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करे। विरोध कौन करेंगे उसका जो उन पुस्तकों को बेचकर विद्यार्थियों को ठग रहे थे। अब उनको ये हो जाएगा कि तुम्हारी बुक बिके नहीं और तुम कंगाल हो जाओगे तो वो विरोध करते हैं लेकिन बुद्धिमान बच्चे विरोध नहीं करते। तो ऐसे इस दास के साथ ही क्रोथाकांड करवाया इन्होंने इन नकली आचार्यों ने इन झूठे आचार्यों ने। सच्चाई तो बताई नहीं पब्लिक को रामपाल गुंडा है आश्रम में ऐसा गंदा कर्म होता है और मीडिया तक भी छपवा दिया क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी ये भी आर्य समाज जी है और इन इसका सारा और मिल गया इन नवीस इन झूठा का साथ दे दिया इनको सच्चे मान के नकलियों को और इनका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं होता ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों का। इनका तो अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। इनकी सत्यार प्रकाश व्यक्ति रहे वेद व्यक्ति रहे इन सारे उल्ट सुलट ज्ञान में रखा अनुवाद गलत कर रखा कई जगह तो इन्होंने कोई लेना देना समाज बिगड़ो चाहे सुधरो लेकिन इस दास ने ठेका ले लिया परमात्मा ने दे दिया। इनकी सब के ज्ञान की खाल तार दूंगा इस तत्व ज्ञान के आधार से और इसे कर दूंगा ये बोए नहीं जामेंगे इनके नाम भी नहीं लिया करेगा इंसान के लेगा तो ये क्या का मैं ऋषि था छोड़ क्यों जिक्र करे उसका और तभी इनसे अर्धा हटेगा और तभी हम सत को ग्रहण करेंगे जब असत से हम उल्टे हटेंगे आंखों देख। इसमें और भी कई धमाकेदार चीज है जो है ना चाय भी पिया करता दानंद चाय पिया करता 150 वर्ष पहले अपने समाज में थी बाद में प्रवेश हुई है ये 150 साल पहले चाय पिया करता देखना। ये है पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दानंद सरस्वती लेखक हैं भवानी लाल भारतीय एमए पीएचडी प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय। प्रोपकारिणी सुभा दानंद आश्रम अजमेर राजस्थान से छपी और इनके मुद्रक कौन है केसरगंज अजमेर से सतीश चंद्र शुक्ल प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पे इसके 381 पृष्ठ पे ये देखो पृष्ठ पे आश्विन द्वितीय पूर्णिमा 1936 विक्रमी संवत, तदनुसार यानी 30 अक्टूबर 1879 1873 में 4 साल पाछल की मृत्यु होगी। गुरुवार को सायं 6 बजे दानपुर पहुंचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा अनेक सेवक एक सेवक था। आर्य समाज के सभा सदस्यों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे, जिसमें महाराज गाड़ी से उतरे। उसमें उन्होंने किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था। शरीर पर रेशमी कोट पहने थे। कहते वो सरपटो पर हाथ में रेशम का रुमाल यौन मत था। कहते हैं शरीर पर रेशमी कोट पहने थे, जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। अच्छा आगे देखो, उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया। वहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया।